साथियों, आज हम पद्माकर और उनकी प्रमुख विशेषताओं को पहले समझ लेते हैं, फिर कविता की विशेषताओं को समझेंगे। पद्माकर रीतिकाल के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और उनका जन्म संवत 1810 में बांदा जिले में हुआ था और अपनी प्रतिभा के कारण उन्होंने राज दरबारों में बहुत प्रतिष्ठा पाई थी। कई राजाओं के साथ वे रहे, जैसे बांदा के हिम्मत बहादुर सिंह के साथ या फिर ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के साथ। तो कई राजाश्रयों में वे रहे और उन्होंने सुंदर रचनाओं की सृष्टि की। प्रमुख रचनाएं उनकी माने तो हिम्मत बहादुर विरदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, राम रसायन, गंगा लहरी है। और ऐसा भी माना जाता है कि जीवन के अंत समय में उन्हें कुछ रोग हो गया था और वे गंगा तट पर रहने लगे थे और उसी समय उन्होंने गंगा की स्तुति में गंगा लहरी को लिखा था। जैसा कि हमने पहले के कार्यक्रमों में चर्चा की थी कि रीतिकाल कई मायनों में विशिष्ट है और उन विशेषताओं को हम पद्माकर में भी देखेंगे। जैसे रीतिकाल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें प्रेम और सौंदर्य का वर्णन है और यहाँ दो कविताएं आपको दी गई हैं, उसमें भी आप इसका एहसास करेंगे। दूसरा है प्रकृति चित्रण। रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति को भी अलग रूप में व्याख्यायित किया है, उनमें सहृदयता है, संवेदनशीलता है, चित्रात्मकता है, ये उनकी शैलीगत विशेषताएं हैं। तो इस पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो पद्माकर के काव्य की जो भावात्मक विशेषताएं हैं और कलात्मक विशेषताएं हैं, उन दोनों का आप वर्णन कर सकेंगे, उनके प्रश्नों को हल कर सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रीतिकाल में प्रकृति का चित्रण हुआ है, लेकिन प्रकृति यहाँ अलग रूप में है। तो पहला जो आपको कविता जो दी गई है वह है वसंत। इसके बारे में पहले मूल पाठ को हम पढ़ लेते हैं और फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। मूल पाठ है, और भांति कुंजन में गुंजरत भौर भीर, और डोर झौरन पे बौरन के वह गए, कहे पद्माकर सु और भांति गलियान, छलिया छबीले छैल और छवि छुए गए, और भांति विहग समाज में आवाज होती, कैसे ऋतुराज के न आज दिन द्वय गए, और रस और रीति और राग और रंग और तन और मन और बन वह गए। अब आप देखें, एक तो आपको एक नादात्मक सौंदर्य दिखाई देता होगा क्योंकि कविता की रचना इस तरह की है। यहाँ पे वसंत के कारण जो प्रकृति का सौंदर्य है, उस सौंदर्य की एक अद्भुत छटा आपको दिखाई देगी। वसंत के आने के कारण उल्लासमय वातावरण का यहाँ पे चित्रण है। यहाँ आप देखें कि कवि कहते हैं कि वसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर और भीतर मादकता भर देता है। मादकता का अर्थ है आनंद की सृष्टि करता है। और आप ये भी देखेंगे कि ध्वनियों के माध्यम से किस तरह से एक मनमोहक चित्र यहाँ प्रकृति का प्रस्तुत किया गया है। तभी कहता है कि वसंत को आए अभी 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन कुंजों में भौरों की भीड़ गूंजने लगी है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि भौरों का समूह प्रसन्नता और हर्षोल्लास के साथ ऐसा लगता है कि वसंत का उत्सव मना रहा है और सभी भौरे मिलकर गुंजायमान हो रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि डाल डाल पे बौरों के जो गुच्छे दिखाई देने लगे हैं, उनका रूप स्वरूप कुछ ऐसा हो गया है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं कि वसंत ऋतु में जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे वृक्ष होते हैं, उनमें फूल आने लगते हैं और हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, और उसी सौंदर्य का वर्णन यहाँ कहते हैं। वे कहते हैं कि गली गलियारों में बने ठने युवक युवतियां भी वसंत के सौंदर्य से उत्पन्न काम भाव से पीड़ित परंतु हर्षित दिखाई देते हैं, अर्थात सभी प्रेम में निमग्न है। और वे कहते हैं कि ऐसे मोहक ऋतुराज वसंत को आए, अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन पक्षियों की चहचहाट चारों ओर सुनाई दे रही है और सारा वातावरण रस से, रंग से, रीति से, गीत और प्रेम से बदल गया है और वन उपवन हर जगह हरियाली छा गई है। और कवि को ये लगता है कि सौंदर्य की इतनी अधिकता है कि उसे शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। तो इसका अर्थ यह हुआ कि वसंत का जो उल्लास है उसका सौंदर्य यहाँ दिखाया गया है। और सौंदर्य का जब वर्णन किया जाता है शिक्षार्थियों, तो रूप के आधार पर किया जाता है, अर्थात आंखों से जो आप देखते हैं चारों तरफ सौंदर्य। रस का वर्णन किया जाता है, आपके अंदर जो आनंद का तत्व आता है गंध के अनुसार, अर्थात सुगंधि के अनुसार सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। और मादकता अर्थात मन को आह्लादित करने वाली जो स्थिति होती है उसके आधार पर प्रकृति का चित्रण किया गया है। यहाँ आप देखें कि जो शिल्प सौंदर्य है वह बड़ा ही अद्भुत है, क्योंकि ध्वनियों का ऐसा विधान किया गया है कि उससे एक सौंदर्य की सृष्टि होती है। खासतौर से अलंकारों का अगर हम देखें तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, जैसे भीर भौर, या आप देखें छलिया छबीले छैल तन मन, इस तरह का सौंदर्य आपको कई जगह दिखाई देगा। एक और विशेषता आपको जाननी चाहिए इन पंक्तियों में कि उन्होंने लाक्षणिक तरीके से शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे औरें भांति। अब यहाँ पे और का जो प्रयोग किया गया है वो सामान्य प्रयोग नहीं है, विशिष्ट अर्थ में इसका प्रयोग है। और भांति का मतलब है कि कुछ और ही, या सौंदर्य कुछ और ही है जिसका शायद वर्णन न किया जा सके। तो इस तरह से आपने इस कविता में प्रकृति के चित्रण का जो रूप देखा वह अकल्पनीय है, वह एक तरह से आप कह सकते हैं कि अकथनीय है। दूसरी कविता आपको देख लेते हैं। दूसरी कविता का नाम है भाग। आप जानते हैं कि हमारे देश में अनेक त्योहार हैं, लेकिन होली का अपना एक अलग महत्व है, और उस होली के बारे में कवि किस तरह से अपना वर्णन करता है वह देखने लायक है। तो मूल पाठ को देखते हैं। एक संग धाये नंदलाल और गुलाल दो, दृगनी गए जो भरी आनंद मढ़े नहीं, धोए धोए हारी पद्माकर तिहारी सौह, अब तो उपाय एक चित्त में चढ़े नहीं, कैसी करो कहाँ जाऊं कासे कहूं कौन सुने, को तो निकासो जासे दर्द बढ़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन तय, कड़िगो अबीर पै अहीर तो कढ़े नहीं। तो आप यहाँ पे देखें, आपको चूंकि ब्रज भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया गया है तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, इसीलिए शब्दार्थ भी आपको साथ साथ दिया गया है, और आप उन शब्दार्थ को जरूर देखें क्योंकि कई कठिन शब्द आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अर्थ को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ होली का बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन है, और एक गोपी का कृष्ण के साथ गुलाल से भाग खेलने का जो क्रम करती है उसका यहाँ सजीव वर्णन है, और वह अपनी सखी से क्या बात करती है वह देखने लायक है। पूरा कवित्व आप कहें तो एक गोपिका के कथन के रूप में है, उसकी परेशानी यहाँ पे दिखाई देती है। इसे समझने के लिए आप होली का त्योहार याद कीजिए, जबकि हवा में अबीर और गुलाब को उड़ाया जाता है। यह उड़ता गुलाल गोपिका की आंख में भी चला जाता है और दूसरी ओर उसके साथ नंदलाल भी आंख में बस गए हैं, नंदलाल अर्थात श्री कृष्ण। सोचिए कि किस तरह की समस्या है। अगर केवल गुलाल आंखों में पड़ जाए तो उसे निकालने के लिए हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी आंखों में बस गए हैं, उसका गोपी क्या करे। इसीलिए वो कहती है कि मैं किससे कहूं और क्या कहूं, मेरी कहानी तो अद्भुत है और अविश्वसनीय भी लगती है। नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर करने के लिए वह अपने भाव को समझा नहीं पा रही है। वो कह रही है कि अबीर तो जैसे तैसे निकल गया पर अहीर नहीं, अहीर अर्थात श्री कृष्ण। और पूरी कविता में देखिए एक व्यंजना है, यहाँ कृष्ण के प्रति उमड़े प्रेम को आंखों में अबीर पड़ने की स्थिति के साथ वर्णित किया गया है, पर यहाँ तुलना करते करते भी रचनाकार ये कहना चाहते हैं कि अबीर तो निकल जाएगा लेकिन प्रेम को आंखों से नहीं निकाला जा सकता, उसे पानी से धोया नहीं जा सकता। इसीलिए सहेली सौगंध भी खाती है, कसम भी खाती है और दूसरी सहेली को आश्वासन भी देती है कि वह श्री कृष्ण को निकाल नहीं पा रही है और उसके पास कोई इलाज भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखिए कि एक त्योहार के माध्यम से प्रेम का वर्णन कैसे रचनाकार करते हैं। तो इस तरह से अगर इसके भाव और शिल्प पक्ष पर बात करें तो कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि रीतिकाल कवियों में प्रेम और सौंदर्य मुख्य रूप से उभर कर आता है, तो यहाँ भी श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति आपको दिखाई दे रही है। गोपिका के प्रेम में श्रृंगार का उत्कर्ष है, एक विशुद्ध रूप है और एक कल्पना की उड़ान भी है। दूसरी ओर अगर हम शिल्प पक्ष की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार की छटा आपको दिखाई दे रही है और दृश्य विधान आपको लगेगा कि सामने भाग खेला जा रहा है और यह भी लगेगा कि जो शब्द योजना है उसमें एक अलग तरह का ताना बाना है। प्रकृति का जो ऋतु वर्णन है वह भी कल्पना से भरा हुआ है और आनंद और उल्लास का जो वर्णन प्रकृति चित्रण में किया है वह वास्तव में गौरतलब है, काबिले तारीफ है। तो इस तरह से पद्माकर ने जो जिस तरह से अपने यहाँ पे प्रतिभा का प्रदर्शन किया है इसीलिए उनको प्रतिभा संपन्न रचनाकार माना जाता है। उनमें अलंकार का सौंदर्य, उनमें भाव पक्ष का जो उत्कर्ष है, भाव प्रवणता है, वह अन्य कवियों से उन्हें अलग करती है। दृश्य विधान जो है उसे इस रचनाकार की श्रेष्ठता साबित होती है। तो इस तरह से इस पाठ को आप कई बार पढ़ें और इसमें मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि इसमें जो प्रश्न आएंगे बोध प्रश्न वह तो सीधा सीधा आपसे पूछे जाएंगे कि पाग में गोपिका अपनी किस विवशता का वर्णन करती है, तो आप बताएंगे कि उसकी आंखों में श्री कृष्ण बस गए हैं और वह उन्हें नहीं निकाल पा रही है या उसकी विवशता है, उसका यहाँ पे वर्णन है। अगर भाषा की बात की जाएगी कि पद्माकर की काव्य भाषा पर टिप्पणी कीजिए तो आपको उनके दृश्य विधान, उनकी ब्रज भाषा, उनके अनुप्रास, इन सब का वर्णन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने इस पाठ को विस्तार से पढ़ा और हम कोशिश करेंगे कि आप इसको बाद में भी जाकर पढ़ें और इस कविता को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया कि ब्रज भाषा में है इसलिए शायद आपको दो तीन बार पढ़ना पड़े।